الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک ہفتہ رمضان کا گزار دیا، اور امید ہے کہ آپ لوگ ذوق اور شوق سے عبادتیں کر رہے ہوں گے. جب بھی تھکن محسوس ہو تو اپنے آپ سے ایک بات ضرور کہیں کہ یہ تھکن تو اتر جائے گی، مگر نامہ اعمال میں اس عبادت کا اجر ہمیشہ باقی رہے گا. لہٰذا باقی دنوں میں اگر ہم اتنی عبادت نہیں بھی کر سکتے، تو کم از کم رمضان کے اس مہینے میں کوئی حرج نہیں کہ اگر جسم تھوڑا تھک بھی جائے، نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے نیکی کریں. سوچیں کہ آپ نے جو عبادتیں پچھلے سال رمضان میں کی تھیں، ان کی تھکن اب یاد بھی نہیں اور نہ ہی باقی ہے، مگر آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر موجود ہے. لہذا رمضان میں طبیعت میں جب بھی سستی آئے تو قرآن کے دو الفاظ یاد رکھیے گا، ایام معدودات، گنتی کے چند دن تو ہیں اور تیزی سے بھاگے جا رہے ہیں. اب دیکھیں، ہفتہ گزر گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، باقی صرف 3 ہفتے باقی ہیں. امام احمد کی ایک بات بہت ہی مجھے پیاری لگتی ہے اور انسان کو کھڑا کر دینے والی ہے. ان کے بیٹے نے ان سے کہا، ابا جان، آپ ہر وقت پڑھائی کرتے رہتے ہیں، پڑھائی پڑھائی اور نوافل اور تہجد، کبھی آرام بھی کر لیا کریں. آرام کب کریں گے؟ تو مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، جب پہلا قدم جنت میں داخل ہو جائے گا تو آرام ہی آرام ہے. تو دیکھیں، آپ کے وہ لوگ اتنے سبحان اللہ دین کی خدمت کرنے والے تھے، اتنے بڑے نام ہیں یہ، اور پھر بھی ان کی خیالات ایسے ہیں اور ان کی فکر اتنی ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں، قرآن میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر آتا ہے نا، ایک تو بالکل کافر اور یعنی مشرک اور ایسے لوگ کے جو جن کا سب کچھ ختم ہو گیا، دوسری طرف بہت ہی متقین، اور ایک ہیں بہن بہن درمیان والے جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں، بدیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں. ایک کا تو پتہ چل گیا کفار کا کہ یہ تو جہنم میں جانے والے ہیں، دوسرے جو بہت ہی متقی پرہیزگار ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں. اب بیچ والے جو ہمارے جیسے لوگ ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. ان کی ایک ایک نیکی بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ ساتھ ساتھ گناہ بھی تو کرتے جا رہے ہیں. اب وہ گناہ کر رہے ہیں، آپ سکیل سوچیں ذہن کے اندر، لے کر آئیں میزان کو، اس میں جہاں ایک طرف نیکیاں رکھ رہے ہیں، ساتھ گناہ بھی ایڈ کیے چلے جا رہے ہیں، کبھی دانستہ طور پہ، کبھی پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں، کبھی جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے لیکن بس کیے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ بس کر رہے ہیں تو اب ہٹنا نہیں ہے ہم نے. تو ہمارے جیسے لوگوں کو تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک نیکی ہمارے لیے قیمتی ہے. اور آج شاید یہ جو ساری میں باتیں آپ کو بتاتی ہوں، ہو سکتا ہے آج اتنی ریلیونٹ نہ لگتی ہوں، اتنی زیادہ ایسے لگتا ہو کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک وہ دن آئے گا جب یہی نیکیاں انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں بھی کر لیتا، اور لوگ کر رہے تھے، میں نے کیوں نہ کی. اور آج تو جمعے کا دن ہے، اور اس دن کی بڑی فضیلت ہے، اس کی اپنی اسپیشل عبادات ہیں جو باقی دنوں میں آپ نہیں کر سکتے. جیسے جمعے کی نماز ہے تو سب کو ہی پتہ ہے، اگر اور بھی کچھ اسپیشل عبادات ہیں جو وہ آج میں آپ کو بتاؤں گی. پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن، بیسٹ آف دا ڈیز. اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اس دن ہی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی. تو فرمایا، بس تم مجھ پہ کثرت سے درود بھیجو اس دن، نا جمعے کے دن، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا، तो यानी बाकी दिनों में भी आप दरूद भेज सकते हैं, लेकिन जुमे के दिन खास तौर पे एहतमाम करना है, क्योंकि इसकी ताकीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। इसको खास कर ले दुरूद के लिए। तो आज के दिन जो भी काम आप कर रहे हो उसमें मैं आपको मुख्तसर सा दुरूद बताऊंगी जो आप उस दौरान कर सकते हैं। मैसे सफाई कर रहे हैं आप, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे हैं, आप अपने कुकिंग कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें दुरूद शरीफ को जारी रखिए। दूसरा स्पेशल इसकी इबादत है कि सूरह कहफ पढ़नी है, ये फितना दज्जाल से भी बचाने वाली है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ ली उसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर रोशन हो जाता है। कयामत के दिन ये नूर का बाइस बनेगी जहाँ पे अंधेरे ही अंधेरे होंगे, जिसने सूरह कहफ जुमे के दिन पढ़ी। बाकी अगर आप किसी भी दिन ये सूरह पढ़ लें तो ये फजीलत नहीं है, और जहाँ ये फितना दज्जाल से बचाने वाली है तो और भी फितनों से बचाती है। इतना दिलजाल तो सबसे बड़ा फितना है। और इसको पढ़ने का टाइम कब से है? जुमेरात की मगरिब से लेके और जुमे की मगरिब तक 24 आवर्स की आपके पास विंडो है, इसमें किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं। इस दिन की एक और सुन्नत ये भी है कि गुसल करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेशली ये तमाम किया करते थे इसका। इसी तरह नाखून काटना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना, ये सब इस दिन की सुन्नतें हैं। और अल्लाह ताला वैसे ही पाक साफ लोगों को पसंद फरमाता है, इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। तो पाक साफ रहने की हमें वैसे भी आदत डालनी चाहिए, कपड़ों को भी पाक रखें, जिस्म को भी पाक रखें। और वो हदीस आपको पता ही होगी कि एक आदमी को कब्र का अजाब सिर्फ पेशाब के छींटों पर एहतियात ना करने की वजह से हुआ था। तो खुसूसी ध्यान रखें कि पेशाब के कतरे कहीं जिस्म पे या कपड़ों पे ना पड़ जाएं। इसी तरह नाखूनों का काटना, अक्सर ख्वातीन लंबे नाखून रखने का शौक रखती हैं, हालांकि आप देखें कि नाखून किसके लंबे होते हैं। जब भी हम किसी नेक खातून का जहन में तसव्वुर लाते हैं तो लंबे नाखून नहीं आते। हाँ, मगर हमने कभी चुड़ैले वगैरह ये चीज़ें, जिन भूत ये चीज़ें तो नहीं देखी, नहीं अल्लाह ना दिखाए, मगर जब कभी इनकी कोई तस्वीर बनी कहीं देखते हैं या कोई इनका इमेज जहन में आता है तो क्या आता है? लंबे लंबे नाखून, बिखरे हुए बाल और ऐसे। तो सहाबियात के लिए तो ऐसा नहीं आता कि उनके लंबे लंबे नाखून होते थे, फिर हम क्यों ऐसे शौक पाल लेते हैं? इसी तरह गिद्ध को देखें तो उसके भी लंबे नाखून दिखाए जाते हैं, तो इन नाखूनों में गंदगी ट्रैप हो जाती है। हम कहते हैं नहीं, हमारे तो बहुत साफ सुथरे नाखून हैं, और सोने पे सुहागा, उस पे नेल पॉलिश भी लगा के रखते हैं ताकि वजू ही ना हो, तो फिर कैसी इबादत कबूल होगी? तो ये नहीं कि आप कहते हैं कि मेरे साफ नाखून है तो साफ है, गंदगी इनके अंदर फंसी होती है। तो इस दिन की जो सुन्नतें हैं इनको पूरे करने की कोशिश कीजिए और अजर पाइए। नाखून भी ट्रिम करें, जो ख़वातीन घर में रहना है तो फिर आप खुशबू लगाएं, अगर बाहर जाना है तो फिर ना लगाएं, मर्द जुमे पे लगा के जाएं। औरतों के लिए वैसे जुमा पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर वो जुमे के लिए जाना चाहती हैं तो अपने प्रॉपर लिबास में जाएं, ऐसा ना हो कि वहाँ पे भी एक फितना बन जाए। ना तो खुशबू लगा के जाएं, फिर अबाया पहने सही अपना आपको कवर करके जाएं। और जो मर्द निकलते हैं अपने घर से मस्जिद के लिए, चाहे वो इस टाइम के लिए निकलते हैं जुमे के लिए या किसी भी वक्त की नमाज के लिए निकलते हैं, या आप लोग जाते हैं तरावी के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब अपने घर से मस्जिद के लिए निकलता है तो जो कदम उठाता है हर एक कदम पे नेकी लिखी जाती है, और दूसरा कदम उठाता है तो बुराई मिटाई जाती है। जितने आपने कदम लिए, अगर दूर है मस्जिद, जितने कदम भी लेंगे हर कदम पे आपकी नेकी लिखी जा रही, गुनाह झड़ रहे हैं। अब ये देखिए कितनी सारी बातें इस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जिससे गुनाह झड़ते हैं, इतनी नेकियां मिलती हैं, इतनी नेकियां मिलती हैं। तो खुद सोचें कि कितने बड़े बड़े इनामात, कितनी बड़ी खुशखबरियां आसान आसान से कामों पे। फिर भी अगर इंसान जहन्नुम का ईंधन बन जाए तो वाकई फिर फरिश्ते क्यों ना कहेंगे, अलम यातिकुम नदीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं आया था? तो तब इंसान कहेगा, भला आया था डराने वाला, लेकिन क्या हमने क्या किया, हमने उसकी बात ही नहीं मानी। अकालु लो कुन्ना नस्मा उनाकिलु मा कुन्ना फी असहाबे साइर, वो कहेंगे कि काश हम सुन लेते समझ लेते तो आज हम जहन्नुम में ना पड़े होते। तो अब आप खुद सोचें कि इंसान असल में दुनिया में सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। वरना ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिल्कुल आसान आसान से छोटे छोटे अमल हैं, पहाड़ों के बराबर इनके ऊपर सवाब के वादे हैं, फिर भी हमारी सुस्ती अगर ना जाए, गफलत ही ना जाए, सुनी अनसुनी कर दें, समझे ही ना, तो कसूर किसका होगा? इसीलिए कयामत के दिन कहा जाएगा कि आज जो अपने आमालनामे में नेकियां पाता है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो बुराई पाता है वो खुद को मलामत करे। इसलिए कि इतने मौके थे, इतने चांस थे, मगर इंसान खुद ही अगर टस से मस ना हो, उसको फर्क ही ना पड़े, एक तरफ से सुने दूसरे से निकाल दे, जो दिल में आता है वो ही करता रहे, तो फिर ऐसे शख्स का कौन भला कर सकता है? याद रखे, नसीहत उन्हीं को फायदा देती है जो वाकई अल्लाह ताला के आगे खड़े होने से डरते हैं, जिनको याद है कि मुझे अल्लाह के हजूर पेश होना है। तो लिहाजा जाग के जिंदगी गुजारे, सोते बिना गुजारे, वरना मौत का झटका तो इंसान को जगा ही देगा। बड़ी गहरी नींद सोए हुए लोग भी ना, वो भी जाग जाएंगे, मगर तब जागने का फायदा नहीं होगा। तो जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, उनको भाग भाग के लें, शौक से लें, हिर्स होनी चाहिए कि मेरे आमाल में नेकियां बढ़ जाएं और गुनाह झड़ जाएं, मैंने ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमानी है, मैंने ये काम छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें मुझे इतनी नेकी मिल जाएगी। और हमारा ये प्रोग्राम भी उन्हीं लोगों को फायदा देगा, वरना तो सिर्फ ये एक सेशन ही है जिसको सुन लिया और बंद कर दिया। तो ये तो उन सब के लिए जो जहन्नुम से आजादी के नुस्खे जानना चाहते हैं, जो जन्नत के रास्ते की रहनुमाई पाना चाहते हैं, जो बख्शिश के तरीके समझना चाहते हैं। और जुमे के दिन तो अल्लाह ताला ने हमें एक और बहुत स्पेशल चीज दी है जो किसी और दिन में नहीं है, और वो है जुमे की एक खास घड़ी, स्पेशल घड़ी, कि जो हदीस में आता है कि कोई मुसलमान उस सात में अल्लाह ताला से जो कुछ मांगता है अल्लाह ताला उसको जरूर अता फरमाता है, और फरमाया लिहाजा तुम इसे असर के बाद आखिरी सात में तलाश करो। अबू दाऊद की रिवायत है, यानी आप जोहर से असर तक नहीं भी तो असर के बाद तो मगरिब तक आप जरूर अपने आप को जिक्र के लिए और दुआओं के लिए फारिग कीजिए। ये घड़ी आज भी आएगी, तो आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिसके लिए आप बहुत तड़प रहे हैं? आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो आपकी हाजत है कि ये पूरी हो जाए? अगर ऐसा है तो इस सात को तलाश करें, और ये बहुत छोटी सी है, ज्यादा लंबी नहीं है, बहुत जल्दी गुजर जाने वाली है। तो असर के बाद दुआओं का बहुत एहतमाम करें, मगरिब तक दुआएं करते रहें, कहीं ये स्पेशल घड़ी हाथ से ना निकल जाए। और ये सिर्फ रमजान में नहीं है, रमजान के अलावा भी हैं ये सब बातें। अच्छा, दूसरे, आज के दिन सदका जरूर करें, ये भी एक सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खास तौर पे औरतों को सदके का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, क्योंकि औरतों को बहुत ज्यादा जहन्नुम में देखा था, लिहाजा औरतें सदके पे खसूसी तवज्जो दें। आप अपनी पॉकेट मनी से सदका कर सकते हैं, आपके पास जेवर होता है, आपके पास कपड़ा होता है, आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं अगर गौर करें तो इसलिए सदका आज जरूर निकालिए। सदका बलाओं को भी रद्द करता है, दुनिया में भी इंसान की प्रोटेक्शन करने के लिए। इसी तरह इफ्तार के बारे में थोड़ी सी आज आपसे बात करना चाहूँगी। इफ्तार के बारे में लोगों को, बाज़ लोगों को ये गलत फहमी है कि हम थोड़ा सा डिले करके इफ्तार करें। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि लोग तब तक भलाई में रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करें। जल्दी करने से मतलब ये है कि जब टाइम आ जाए तो उसके बाद डिले ना करें। और अब तो इतना एक्यूरेट टाइम आपको मिनट सेकंड तक पता होता है कि इस वक्त सूरज गुरूब हो जाता है, सब जगह पता है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, कोई आप बाहर खड़े हुए थोड़ी देखते हैं कि आपको इसमें शक पड़ जाए। इसके बावजूद अगर इंसान ये कहे नहीं चलो 2-3 मिनट ठहर जाओ, हो सकता है अभी मतलब ना हुआ हो टाइम, तो वो जो 2-3 मिनट ठहरना है वो सही नहीं है। आपको पता है ये यहूद का तरीका था डिले करना इफ्तार में। तो हमें इफ्तार का जब टाइम हो जाए तो जल्दी करनी है, उसके अंदर रोज़ा खोलने में देर नहीं लगानी। और बिल्कुल आप जब देख लें अपने टाइमिंग्स, अपने लोकल टाइमिंग्स, तो उसके बाद आप इफ्तार कर लें, इसमें कोई भी ऐसी कबाहत नहीं है। इसी तरह आज का जो पूरा दिन है इसको, जो अभी तक हमने सारी, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है तो वो पिछली बातें भी सुन लें, पिछले प्रोग्राम, लेकिन जो भी चीज़ें रह गई हमारी जो इतने दिन से हम नहीं कर सके उनको आज ज़रूर कीजिए। एक दिन कम से कम ज़रूर होना चाहिए जिस दिन हम इत्तमाम के साथ सारी सुन्नतें पूरी करें, स्पेशल दिन समझ के। आज ये समझिएगा आज स्पेशल दिन है, ये नहीं कि बस जुमे का दिन है तो क्या हुआ, नहीं, स्पेशल दिन है आज। आज मैंने स्पेशल सारा कुछ करना है, जिस चीज को अल्लाह ताला ने फजीलत दे दी हम क्यों ना दें। अच्छा, और ये जो सदक़े में एक बात और आपसे कर दूं कि जो अफसल तरीन सदका है ना, ये पानी पिलाना है। हाँ जी, इब्ने अब्बास से पूछा गया कौन सा सदका अफसल है, तो फरमाया पानी पिलाना। कि तुम सूरह आराफ में नहीं देखते हो कि जहन्नमी कहेंगे हम पे पानी ऊंडे लो, वो जहन्नुम वाले जन्नत वालों से कहेंगे हमारे पर पानी ऊंडे लो, वो जल रहे होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। तो बाज़ ताबईन कहते हैं कि जिसके गुनाह ज़्यादा हो जाए तो पानी पिलाना वो लाजिम कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुत्ते को पानी पिलाने पे एक औरत की बख्शिश कर दी थी। तो उसका क्या कहना जो इंसानों को पानी पिला दे, ठीक है। तो इसलिए कहीं आप उसमें पैसे डाल दें जहाँ पे कुआं खुदवाया जा रहा है, या कहीं नल लगवाया जा रहा है, या पे जो भी, देखिए उसमें प्यासे इंसान पिएंगे, चरिंद परिंद पिएंगे, कोई भी पिएगा ना, जानवर पिएंगे, जब तक कोई उससे पीता रहेगा तब तक आपका अजर चलता ही रहेगा, चाहे हम दुनिया में हों या ना हों, वो जारी रहेगा अजर। ये सदका जारिया वाले काम है। और ये कितनी, हमें नहीं पता कि पता नहीं किसके पानी पीने से हमारी बख्शिश हो जाए। तो इसी तरह वहां पे भी करें, वैसे भी अब किसी को भी ना, आप कोई आपसे पानी मांगे तो फौरन पानी पिलाएं, चाहे घर वाले क्यों ना, ये समझ के कि अल्लाह ताला इसकी वजह से मेरी बख्शिश कर दे, पानी पिलाना सदका है ये समझ के। कहीं आप सबील लगवाएं, कहीं आप कुछ भी करें, खासतौर पर गर्मी के दिनों में। इसी तरह एक और बहुत ही ज़बरदस्त काम है जिससे कि आप रोज़ा रखने वाले और क़याम करने वाले के बराबर अजर ले सकते हैं। जो रोज़ा नहीं रख सकते तो ऐसे कामों को ख़ास तौर पे वो सुना करें, लेकिन बाकियों के लिए भी, इसलिए कि बड़ी फजीलत वाला काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेवाओं और मसाकीन के लिए मेहनत और कोशिश करने वाला उस तहज्जुद गुजार की तरह है जो कभी सुस्ती नहीं करता, और उस रोज़ेदार की तरह जो कभी रोज़े नहीं छोड़ता। मुसलसल, यानी एक बंदा रोज़े रख रहा है, मुसलसल तहज्जुदें पढ़ रहा है, इतना अजर है कि कोई बेवा है, कोई मिस्कीन है आपकी फैमिली में है, या आपके जानने वालों में कोई है, कहीं पे भी आपको पता चलता है किसी का, इससे बेपरवाही ना करें। हाँ भाई फला कोई बेवा हो गई, पता नहीं हमें क्या पता उसका कहीं गुजारा चलता ही होगा। नहीं, फाइंड आउट करें, और उनके कोई काम है तो वो कर दें, उनकी कोई मदद कर दें, देखें उनके घर के खर्चे कैसे चलते हैं, देखिए उनके कोई ऐसे काम तो नहीं जो आपकी वजह से हो सकते हो, आपके कॉल करने से या आपकी कोई हेल्प करने से। एक और हदीस में आता है, ऐसा करने वाला जो बेवा और मिस्कीन के लिए मेहनत करे, कोशिश करे, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह, इतना बड़ा फजीलत इस काम की। फिर क्या मुसलमानों में कहीं कोई बेवा या मिस्कीन ऐसा होना चाहिए जो कि बेचारों मददगार पड़ा हुआ है? कहीं पे भी नहीं, कहीं मसाकीन है। और जरूर हम जानते होंगे, किसी ना किसी का तो हमें पता होगा, तो जरूर उनके लिए कोशिश करें, इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा फजीलत वाला अमल है। अब देखिए ना, ये आसान अमल है, मैं कितना इस चीज के ऊपर जोर दे के बताऊं कि ये कितने आसान है और कितने एक्सेसिबल है हमारे लिए, क्योंकि हम जिंदा हैं, हमारे पास नेमते हैं, हमारे पास अल्लाह ताला का बहुत फजल है, तो हम क्यों ना इन चांसेस को आज अवेल कर लें और अपनी आखिरत बना लें, बेपरवाही को छोड़ दें, कम से कम रमजान में तो होश में आए हम। इसी तरह उम्मीद है आप लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे होंगे, ये बड़े ही बरकतों वाला काम है। आपको मैंने बताया था जैसे कि एक कुरान आप हर नमाज के बाद 2 पेजेस जो पढ़ने थे वो पढ़ रहे होंगे, और बाकी आपका बाकी वैसे ही चल रहा होगा। अबू हुरैरा ने फरमाया कुरान पाक पढ़ने के बारे में कि बेशक कुरान पढ़ने की वजह से घर अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है, यानी घर में वुसअत आ जाती है, और इसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं, सुभान अल्लाह, शयातीन उस घर को छोड़ देते हैं और घर की खैर व बरकत बढ़ जाती है। ये जो हमारे घरों में झगड़े, बेसकूनियाँ, बेचैनियाँ, गुस्से और आपस के अंदर क्लैशेस होते हैं, ये शयातीन के होने की वजह से होते हैं। तो घर बरकत से भर जाता है, उसके लिए ये नहीं है कि आप साल में एक दफ़ा कुरान हानी कराने बिठा दें लोगों को, नहीं, आपको अपने आप को खुद जोड़ना है कुरान के साथ, आपको खुद कुरान पढ़ना है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो लोगों को बिठा नहीं सकते ना, रोज आपको जरूरत है कुरान की। तो ना सिर्फ रमजान में बल्कि रमजान के बाद भी हमें इसको जारी रखना। और फरमाया कुरान ना पढ़ने की वजह से घर अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाता है, फरिश्ते उसको छोड़ देते हैं और शयातीन वहां बसेरा कर लेते हैं, क्यों ना करेंगे जहां पे अल्लाह का जिक्र ही ना हो। तो इसको लाजमी पकड़े, कुरान से जुड़ जाए, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की मोहब्बत अता फरमाए, क्योंकि ये बहुत ही अफजल अमल है। और ये जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था, ये हमारा सिफारशी बनेगा क्यामत के दिन, तो इसलिए इसको सोच के कि ये मेरा सिफारशी है, इस तरह से आप पढ़ा करें। आज का जो जिक्र है वो दुरूद शरीफ है, और कोई मौका हमने नहीं आज छोड़ना के दरूद से खाली हो हमारा कोई लम्हा। और एक बात याद रखिएगा, ये बात को, कि जब आपके जहन में दुआएं ना आए, एक एक वक्त ऐसा भी आता है बंदे को समझ नहीं आती मैं दुआ क्या मांगू, पता नहीं दुआएं भूल जाती हैं या क्या होता है, समझ नहीं आती, जब कभी ऐसा हो बस दुरूद शरीफ पढ़ने शुरू कर दिया करें, ये तो आता ही है ना, क्योंकि इससे आपकी जरूरियात पूरी हो जाएंगी, इससे इंसान के दुख और गम दूर हो जाएंगे। और इसमें एक बात बहुत अहम है कि मसनून दरूद पढ़ें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें बताए, हम ऐसे दरूद ना पढ़ें कि जो दूसरे इंसानों ने बताए हुए, वो तो उनके अल्फाज हैं। आप बताएं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज से बेहतर अल्फाज भी कोई हो सकते हैं, फिर हम क्यों दूसरे दुरूद पढ़ें, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारे दुरूद बताए हैं, एक नहीं बताया, बहुत सारे बताए, तो उनको देखें। अगर आप बदल बदल के पढ़ना चाहते हैं, अब बाज लोग कहते हैं कि ये ये दरूद खुद ही बनाए हुए हैं, ये दरूद इसकी ये फजीलत है, इसकी ये फजीलत है। अल्लाह जाने उनको किसने बताया कि इसकी ये फजीलत है, जबकि ये तो खुद ही उन्होंने बनाए, खुद ही बाद में लोगों ने लिखे हैं वो दरूद। लिहाजा इस किस्म के दरूद को छोड़ दे, जैसे दरूद लखी है, दरूद ताज है, दरूद तंजीना है, पता नहीं दरूद मुकद्दस है, दरूद अकबर, ये इंसानों ने लिखे हैं, ये मसनून नहीं है। अब मुझे बताएं, अगर ये सुन्नत से है ही नहीं, तो इनको किसने बताया कि इसकी क्या फजीलत है? फजीलत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बताएंगे ना, तो ये कहाँ से इन्होंने फजीलत ले ली? तो जो मेरे नबी की जुबान अकदस से अल्फाज निकले में ना, वो पढ़ना सीखे, उनको बड़ा समझे, ना कि लंबे लंबे दरूद होंगे तो फिर ही वो अच्छा है, नहीं। और आज मैं आपको एक मुख्तसिर सा दरूद बताती हूँ जो मसनून है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इसको दुआ में लाजिम कर लो, यानी दुआ भी मांगने लगे तो पहले दुरूद पढ़े। तो ये भी फरमाया कि मुझ पे दुरूद भेजा करो और दुआ में इसको लाजिम कर लो, और यूं कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, बस इतना सा। हमें असल में पता नहीं, शायद तसल्ली नहीं होती जब छोटी कोई चीज़ मिल जाती है, हम सोचते हैं शायद बड़ी ही होगी तो इसमें ज़्यादा अजर, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस दरूद को आपने आज पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। और आज जो मैं आपको दुआ बताने लगी हूँ, क्या कहने उस दुआ के, इसलिए कि उसमें इस्मे आज़म है। हाँ जी, और आपको पता है इस्मे आज़म से जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, वो नमाज़ पढ़ रहा था, और नमाज से फारिग होके उसने ये अल्फाज कहे जो मैं ये आपको बताऊंगी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुने तो आपने फरमाया, इसने अल्लाह ताला के इस्मे आज़म से दुआ मांगी है, जब कोई दुआ इससे मांगी जाए तो वो ज़रूर कबूल होती है, जो सवाल किया जाए अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो अब वो क्या अल्फाज हैं, इनको आप नोट कर लें, और इनको कह के फिर आपने जो भी आपकी मांग है वो मांगे अल्लाह से, जो भी सवाल करना है वो करें। वो क्या अल्फाज हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ, बि अन्ना लकल हम्द, इसलिए कि सारी तारीफ अल्लाह तेरे लिए, ला इलाहा इल्ला अंता, कोई इला है ही नहीं तेरे सिवा, अंतल मन्नानू, है अल्लाह तू एहसान करने वाला है, सुभान अल्लाह, अंतल मन्नानू बदीउ समावाति वल अर्द, तू पैदा करने वाला है, नए सिरे से पैदा करने को कहते बदी, तू पैदा करने वाला है आसमानों को और जमीन को, या जलजलाली वल इक्राम, या हय्यू या कय्यूम, इसी तड़प के साथ आपने मांगना है, बुजुर्गी वाले, इज्जत वाले, हमेशा जिंदा रहने वाले और हमेशा कायम रहने वाले, फिर आगे अपने बोलें कि मुझे ये चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनको इसको याद कर लें। अब हमें इसमें आजम वाली दुआ पता चल गई, और क्या चाहिए? तो इसको याद करके फिर अपनी दुआ मांगिए। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुआ में दिल को हाजिर होना जरूरी है, ऐसे नहीं कि बेपरवाही से दुआ मांगी जाए। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आज के दिन में हमें उस घड़ी में दुआ मांगने की तौफीक दे दे जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।